नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आपको याद होगा कि जब हमने ये सफर शुरू किया था तब हमारे पास एक सवाल था कि आज ऐसा क्या हो गया है कि हम अपने सभी मूल्य खो बैठे हैं, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है और क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है। फिर हमने तलाशा अपने आप को, हु एम आई, ये सवाल था सामने, परमात्मा की पहचान हुई, कई सारे और मुद्दे सामने हुए। आज हम एक नई दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली कई कड़ियों में हम उन्हीं रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो रिश्ते जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूम रहा है और ऐसा लगता है कि आज उन्हीं मीठे प्यारे रिश्तों में कहीं कड़वाहट आ गई है, कहीं ठंडे पड़ गए हैं। क्या ऐसा हो गया है? चाहे वो रिश्ता एक पिता और पुत्र का हो, माँ या बेटी का हो, पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, रिश्ते कितने ही हो सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, आगे बढ़े समाज में और आगे बढ़ते जाएं तो कई सारे और रिश्ते सामने आएंगे, दोस्त और दोस्त का रिश्ता। क्या हो गया है ऐसा कि रिश्तों में ही हम एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं? जहां नजदीक आना जाते हैं वहां कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो आज से ये नई जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उसमें हम रिश्तों को ही खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रास्ता है जो हम इन रिश्तों को दोबारा नजदीक ला सकते हैं। हर बार की तरह इस सफर में भी हमारी हम सफर है, हमें किस तरह से अपने रिश्तों को और प्यारा करें, मधुर करें, ये बताने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
बहुत से रिश्तों को हमने अभी बात की है सिस्टर शिवानी, क्योंकि इतने सारे मेल्स जो आ रहे हैं, इतनी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं। हमने जब शुरुआत भी की थी तो यही किया था कि कहीं रिश्तों में परेशानियां बहुत है। आज इस शुरुआत को जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उस सबसे प्योर रिश्ते की बात करते हैं, उस मीठे रिश्ते की, उस पवित्र रिश्ते की जिसको हर कोई बहुत प्यार से देखता है, वो है एक पेरेंट और चाइल्ड का, माँ बाप और उनके बच्चों के साथ जो संबंध है। तो जानते हैं कि वो भी आज प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज हैपनिंग। उसमें भी कई पड़ाव आते हैं। आज शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बच्चा जो गर्भ में है, वूम्ब में है, यू नो, वहीं से शुरुआत,
वहीं से एक रिश्ता बनना शुरू।
क्योंकि आपने भी तो, हमने जो बात की है उसमें ये है कि चार महीने में आत्मा आ जाती है तो वो एक इंडिविजुअल है जो वूम्ब में है। इसका मतलब सब कुछ चलना शुरू हो गया है उसके साथ। मेरा पहला सवाल ये है कि आज के इस दौर में जब हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को देखा है, माओं को देखा है, फादर्स को देखा है, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किस तरह की डिलीवरी करनी है, इसके बारे में क्या खाना है, किस तरह की, यू नो, लाइक क्या क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे के लिए, ये भी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वूम्ब में है बच्चा तो उस पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है, किस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है?
फंडामेंटल, जैसे आपने सारी बातें की कि आजकल बाह्य रीति से हम सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन पूरी डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है थॉट लेवल का। क्योंकि जो प्रकार की थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग जो एक क्रिएट होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है। आज ऐसा भी हो रहा है कि कई बच्चे जब पैदा होते हैं, यू नो, पहले भी हम देखते थे कि बच्चे पैदा होते ही कई बार शारीरिक रीति से कमजोर हैं, यू नो, फिजिकली नॉट वेरी हेल्दी, और इसीलिए माँ को हमेशा ये मतलब शिक्षा मिलती है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा आपका स्वास्थ्य होगा तो आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है। अब एक और एस्पेक्ट कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग मेंटली, क्योंकि जैसा आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा वैसे ही उस बच्चे का भी बनेगा। इट इज वेरी सैड, लेकिन आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ सेपरेट, you know, department by itself, and you have 2 or 3 year old children, जो डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, और ये कहा जाता कि ये बच्चा पैदा ही इमोशनली वीक हुआ था, क्योंकि अभी तक तो कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है उसके जीवन में, अभी तो वो स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि जनरली कहते हैं स्कूल जाने के बाद द स्ट्रेस लेवल स्टार्ट्स, लेकिन अभी वो 2 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया, तो डॉक्टर कहते हैं दे आर बॉर्न इमोशनली वीक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे आर बॉर्न इमोशनली वीक इज प्रोबेबली हिंटिंग एट द फैक्ट दैट द मदर was emotionally weak during this period.
Okay, in fact, here I would like to ask one question. Mothers, ज्यादातर मैंने देखा especially first जब baby हो रहा है, पहला experience है, इतने सारे physical discomforts हो रहे होते हैं, उसी time पे शादी हुई होती है, adjustments भी नहीं हो रही होती,
एंड आजकल के समय में उसी time पे नया career भी होता है.
बिल्कुल, तो मतलब इतनी सारी adjustments,
बहुत ज्यादा stress है, you know, under a condition of stress the new creation will obviously get affected.
यहाँ एक जो एक आई थिंक फंडामेंटल डिफरेंस जो बहुत से नहीं जान पा रही है मदर्स भी और पेरेंट्स भी, वो ये कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे के प्रति, इफ देयर इज अ चाइल्ड इन द वूम, उसके प्रति तो आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, प्यार से भरे हुए, क्योंकि एक नया सृजन हो रहा है, लेकिन आम जिंदगी में आप इतने डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक जो खुशी का लम्हा है उसके बारे में सोचकर. तो मैं ज्यादातर पेरेंट्स से या माओं से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे क्योंकि मैं उसके प्रति बहुत पॉजिटिव थी.
बात देने की नहीं है, यू नो इट्स लाइक, हाँ आप अपने बच्चे के प्रति कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते, जब अभी वो वूम्ब में है तब भी नहीं, जब वो बाहर इस दुनिया में आ जाएगा तब भी नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं सोचेंगे. एक पेरेंट कभी भी बच्चे के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेगा, लेकिन एक पेरेंट सारा दिन क्या सोच रहा है, इट इज वाइब्रेशन, इट इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड हियर. हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, एवरी सिंगल थॉट, प्लीज दिस हैज टू बी टेकन केयर, एवरी सिंगल थॉट ये एनर्जी है, एंड एवरी सिंगल थॉट उस आत्मा पर अपना प्रभाव डाल रही है,
आपकी आपसे जा रही है.
जैसे हर संकल्प आपका शरीर पर प्रभाव डालता है, जैसे आपके संकल्प वैसे शरीर बनेगा. आपका हर संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालता है, आपका हर संकल्प संबंधों पर प्रभाव डालता है. व्हाट इज अ रिलेशनशिप? अ रिलेशनशिप इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि एक दो के साथ हमारा जो एनर्जी है वो किस प्रकार की हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं. But that depends on कि सारा दिन कौन सी क्वालिटी की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं. इट इज ओके दैट आई मीट यू राइट नाउ फॉर 10 मिनट्स एंड मैं आपके प्रति तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन अगर मेरा सारा दिन बहुत नेगेटिव बीता है तो यहाँ आने के बाद भी भले आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करूँ, लेकिन वॉट इज गोइंग ऑन योर इन साइड इज नेगेटिव
एंड वेरी डिप्रेस्ड.
और मे बी ये जो है जो क्रिएट हुआ हुआ है ये कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा. कहाँ तक पहुंचेगा? आप तक पहुंचेगा. तो अभी तो आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तब भी वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, तो जो बच्चा वूम्ब में है उस तक वो एनर्जी नहीं पहुंचेगी. एंड इट्स नॉट ओनली द मदर, इट्स ऑल्सो द फादर, एंड इट्स नॉट ओनली द फादर, इट्स एवरी मेंबर इन द फैमिली. घर का वायुमंडल क्या है वो आप एक पॉजिटिव एनवायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या आजकल बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट होने के कारण. और इसीलिए जो कहा कि बच्चा इज बॉर्न इमोशनली वीक, क्योंकि नेगेटिव वायुमंडल में अगर वो पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? इट्स नेगेटिव. और फिर आने के बाद भी उसको किस प्रकार का वायुमंडल मिलेगा? नेगेटिव. उसको कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा है या सोच रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी लेवल पूरा घर के अंदर क्या है. सो द मदर, the father, everybody needs to take care of all their thoughts. मतलब भले उनको ये लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन this is the biggest thing that you can do for your child. तो जैसे हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या भोजन खाना है क्योंकि उससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ता, वैसे ही हमें ये सोचना होगा कि मन के लिए कौन सा भोजन, मन में कौन से thoughts होने चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चे के मन पर भी पड़ता और उसी का इफेक्ट बच्चे के शरीर पर भी पड़ता है. बच्चे के पैदा होने के बाद तो हम बहुत ध्यान रखते हैं उसका, क्योंकि सारी जीवन ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली उससे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है. और हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं वैसे हर बात का, लेकिन जो मेन फंडामेंटल बात है शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता.
शिवानी, इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब विचार की ही हम बात कर रहे हैं तो व्यवहार में ही जब आ जाते हैं, खासकर मेल फीमेल चाइल्ड का जो एक डिफरेंस है, इवन इफ माँ नहीं कह रही, पिता नहीं कह रहा, थॉट में भी अगर आ जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स भी या कोई भी समाज का जो भी व्यक्ति है थॉट में भी आ जाता है तो क्या वो बच्चे तक पहुंच रहा है?
एब्सोल्युटली एनर्जी है. हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये एवरी थॉट मतलब मे बी वी आर रबिंग इट इन अगेन एंड अगेन बट दैट्स द फंडामेंटल थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और फिर भी वो ऐसी चीज है जिसकी तरफ हमारा सबसे कम ध्यान है और वो ये कि हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो जिसकी प्रति क्रिएट की जा रही है वो उसकी तरफ तो डायरेक्टली जा रही है. जैसे ही एक संकल्प में भी आया कि लड़की पैदा हुई है या लड़की पैदा होने वाली है दैट्स ऑल. द फर्स्ट थॉट ऑफ रिजेक्टिंग दैट चाइल्ड एंड समवेयर अनइंटेंशनली हमने उस बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर कर दिया. यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कौन आ रहा है. एक आत्मा, यू नो, सोल कॉन्शियसनेस से सारा कुछ चेंज हो जाता है. एक आत्मा जिसके साथ मेरा एक नया एक्सचेंज ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट होने वाला है, वो आत्मा जिसके साथ मेरा कोई बहुत विशेष लेन देन है वो हमारे घर में आ रही है. एंड एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली हैज अ सर्टन you know very deep account with that soul and isliye wo atma hamare ghar mein aa rahi hai to us atma ka aahwan karo us atma ko reject nahi karo.
This is wonderful. You know the moment we start living in soul consciousness jaise hi hum us pure ehsaas ke sath jeete hain pura thought process change ho jata hai. Ab mujhe samajh mein aa raha hai ki hum ye rishton ki jo aage puri you know vivechna karne wale hain kyunki kitna different perspective ho jayega.
Absolutely.
It's not that I own that child who is going to come, लेकिन एक relationship ऐसा है, एक account है उसके साथ जो कि अब आगे और पता चलेगा कि मैं कैसे उस account को आगे handle करूंगी
और उसको कितना सुंदर रीति से हम चला सकते हैं आगे, क्योंकि एक आत्मा आई है जिसके साथ हमारा बहुत deep exchange है of energy, क्योंकि it's the deepest relationship which is going to take place. So let me start it on a very pure and positive note rather than you know a negative thought.
स्वागत करें एक नई आत्मा, एक नए soul का, एक नए आगमन का. बहुत सुंदर. सो एक्चुअली इट हैज इवन मेड मी फील यू नो डिफरेंट.
फर्स्ट स्टेप पे हम किस थॉट लेवल पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेज है तो वो अभी बहुत ज्यादा अपने आप उतना ज्यादा विवेक सी माइंड इज देयर. वन थिंग वी विल हैव टू रिमेम्बर कि कौन आया है. आत्मा आई है. कॉस्ट्यूम छोटा है, यू नो हम कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता. एक क्षण के लिए थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे. आत्मा है, कुछ महीने पहले तक एक बहुत बुजुर्ग शरीर में थी, यू नो एक 50, 60, 70 जो भी एज के शरीर में थी. कॉस्ट्यूम वो था, आत्मा वही थी. अकाउंट पूरा हुआ, उस आत्मा ने वो वाला कॉस्ट्यूम छोड़ा और दूसरा कॉस्ट्यूम लिया. अब कॉस्ट्यूम छोटा है, आत्मा वही है. This is a very very important thing to understand कि हम किससे relate कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ thought exchange कर रहे हैं. वो एक आत्मा है, उसके अंदर भी उतनी ही सोचने की शक्ति है जितनी हमारी है. Brain develop नहीं हुआ है, that is okay, that's law of nature. तो वो प्रकृति के अनुसार, age के अनुसार develop होगा, तो उसका बोलना सुनना चलना, लेकिन सोचना that is not going to develop with the age because that is the faculty of the soul not of the body. The atma to soch rahi hai, wo sankalp kar rahi hai aur wo hamare sankalp catch bhi kar sakti hai. Isliye har sankalp jo hum kar rahe hain us bacche ke sath ya us bacche ke prati ya ghar mein, we need to be very careful of what we are doing, what we are saying, because everything is reaching the soul.
That's great. Actually होता ये है कि जब बच्चा होता है तो हमारे लिए एक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, दूसरा ये कि ये मेरा है, यू नो, तो वो गुड्डा है, गुड़िया है, उस तरह से एक इंडिविजुअल की तरह. और कहा यह जाता है कि एक रिसर्च ये कह रही है कि 2 साल के अंदर अंदर तक, 24 months the whole of the brain has been developed.
Absolutely.
पूरा डेवलप हो चुका होता है 2 साल में ही, तो इट मीन्स वो इंडिविजुअल तो हो गया
वो ऑलरेडी इंडिविजुअल है. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आत्मा वही है डेवलप्ड. आत्मा की डेवलपमेंट नहीं होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट है. सिर्फ ये है कि आत्मा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है बिकॉज द बॉडी इज नॉट ग्रोन अप, बट द सोल डजंट हैव टू ग्रो अप. तो जब आप उस बच्चे को उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू सी योर होल लेवल ऑफ इंटरेक्शन विल चेंज. देयर विल बी मोर रिस्पेक्ट, देयर विल बी मोर मैच्योरिटी इन योर इंटरेक्शन. आई एम टॉकिंग टू दैट ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट एंड एवरी टाइम जब आप एक बच्चे को देखें कि इंस्टेड ऑफ यू नो सोल कॉन्शियसनेस बच्चे से ही कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट द फिजिकल एस्पेक्ट लुक एट द चाइल्ड लाइक दैट कि दिस इज अ प्योर सोल. एक्चुअली हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो कि इम्पोर्टेंट है ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. हर एक व्यक्ति के एवरी ह्यूमन बींग हैज फोर एस्पेक्ट्स फिजिकल इंटेलेक्चुअल या मेंटल कहे सोशल एंड स्पिरिचुअल. अब बचपन से ही कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि हमने तीन एस्पेक्ट्स पे तो बहुत अच्छा ध्यान दिया फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट. आप शरीर की डेवलपमेंट के लिए अच्छा भोजन एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअली बेस्ट स्कूल बेस्ट नॉलेज एवरीथिंग. सोशल आपको ये हॉबी क्लासेस में जाना है इस क्लब में जाना है सब कुछ यू हैव टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पता नहीं शायद क्या होता है. सो दैट एस्पेक्ट गेट्स निग्लेक्टेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. एक बचपन से ही वो एस्पेक्ट ही निग्लेक्ट हो गया और वो इतना निग्लेक्टेड होता रहा कि बड़े होने के बाद वो एस्पेक्ट की भी अवेयरनेस भी नहीं है. तो हम अपनी टेबल को अपने जीवन की इस टेबल को तीन पैरों पर खड़ा करके रखा हुआ है और चौथा पैर ना के बराबर है तो वो टेबल कहाँ सेट हो गए. जितना हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अर्थात कि सोल कॉन्शियसनेस तो प्रैक्टिस करेंगे हम करेंगे बच्चे को शायद उसकी उतनी अवेयरनेस ना हो लेकिन बच्चे को
ट्रीट
हम जितना उस आत्मस्वरूप को देखकर करेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ पीसफुल सोल प्योर सोल तो क्या वाइब्रेशंस जाएंगी और उससे उस आत्मा की जो सेल्फ एस्टीम है. सी मेजोरिटी ऑफ अस आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम क्योंकि हमने अपनी सेल्फ एस्टीम किस चीज पर बेस की कि हमारी डिग्रीज क्या है हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है हमारे पास कितना धन है कितनी पोजीशन है क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं वो सिस्टम में
हम परफॉर्म कितना कर रहे हैं. जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ दो साल का 10 लोग बैठे हैं परिवार में कोई आया है आप परफॉर्मेंसेस शुरू करवा दो
राइट आप ये करके दिखाओ आप ये बोलो
सुनाओ आप ये बताओ आप ताली बजा. इनफैक्ट 6 महीने का बच्चा ताली बजा रहा होता है यू नो इवन दांत निकल आता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट.
एंड अब ये कहाँ साइकोलॉजिकली फिट हो रहा है कि जैसे ही वो बच्चा परफॉर्म करता है हम सब वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं विच इज ओके वी नीड टू अप्रिशिएट दैट लेकिन उसके माइंडसेट में उसके बिलीफ सिस्टम में ये बैठता जा रहा है कि जब हम इस तरह से कुछ करके दिखाते हैं यू नो व्हेन वी अचीव समथिंग लाइक दिस वी गेट अप्रिसिएशन. एंड ये एक बहुत 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 डीप बिलीफ सिस्टम है कि अचीवमेंट से ही अप्रिसिएशन मिलेगी. What I am as an individual, what are my values, what are my qualities, इसकी कोई appreciation कभी किसी ने की नहीं. Appreciation was always for आपने कितना अच्छा dance किया आपको किस game में gold medal मिला आपको school में कितने marks मिले तो achievement. हर step पर आपकी achievement को check किया गया और achievement के आधार से appreciation. तो किस belief system से हम बड़े हुए लाइफ आगे की भी क्या रही यही बनती रही ना कि पोजीशन, स्टेटस सैलरी मकान गाड़ी क्योंकि जितनी अचीवमेंट होती जाएगी लोगों से अप्रिसिएशन मिलती जाएगी मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर डिपेंडेंट थी. अगर एक बचपन से ही यू नो चाइल्ड के अंदर ये डलता जाए दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू अचीव बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट on what kind of an individual you are, what is, how do you feel inside, how do you think inside, what are your values, is honesty your value, is love your value, is peace your value, and if you express these values, you will get appreciation.
लेकिन यह शिवानी एक नहीं हुआ. पेरेंट की एक बात मैं पूछती हूँ कि एक एज अ मदर एज अ फादर जब मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ इतना छोटा बच्चा जब है तो मैं फील जब तक ये नहीं इट्स अ नेचुरल फीलिंग कि इट्स माय बेबी राइट आई एम दैट इज व्हाई आई एम रेडी टू डू एनीथिंग आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग. लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल के रूप में उसको लेने लग जाऊंगी कि वो भी एक इंडिपेंडेंट सोल है जो कि मेरी ही एक्सटेंशन नहीं है ये एक और मेजर बिलीफ है माय चाइल्ड इज माय एक्सटेंशन आई थिंक. तो यहाँ मेरा सवाल भी ये है मेरा जवाब भी मुझे अपने आप ही दिख रहा है लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के पास ये होगा सवाल कि जब मेरे को मेरे बच्चे के साथ इतना ज्यादा जुड़ाव होगा तभी तो मैं सो सब कुछ कर पाऊंगी उसके लिए या कर पाऊंगा जो मेरी जिम्मेदारी है जो आगे मुझे अभी और भी करना है.
अटैचमेंट एंड प्यार, थोड़ा सा इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड. अभी अगर उस बच्चे को सपोज गलती से चोट लग जाती है, माँ का क्या हाल होता है?
इट्स इम्पॉसिबल. आई थिंक इट्स शी गेट्स हर्ट.
राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट. अब वी नीड टू आस्क, इज इट बेनिफिशियल? इज इट बेनिफिशियल फॉर द मदर टू गो थ्रू सो मच पेन एट दैट टाइम? एंड इफ द मदर इज इन पेन, विल शी रियली बी एबल टू लुक आफ्टर द चाइल्ड वेल? यू नो, बच्चा तो है, लेकिन इफ द मदर इज इन पेन, इन कंफ्यूजन, स्ट्रेस्ड आउट कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या वो उस बच्चे को उस समय जो राइट ट्रीटमेंट चाहिए या जो राइट वाइब्रेशन चाहिए? सी, देयर इज अनदर इंडिविजुअल, ही इज इन पेन, ही और शी इज इन पेन, उसको मेरे से क्या चाहिए? अभी हीलिंग करनी है,
केयर चाहिए,
हीलिंग करनी है. तो केयर फिजिकली तो हम करते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव एनर्जी. हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें तो हमारा शरीर का अंग जो तकलीफ में है वो जल्दी ठीक होता है, और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें तो उसको टाइम लगता है. सिमिलरली विद द चाइल्ड, इफ आई रियली वॉन्ट टू गेट द चाइल्ड टू गेट ओके सून, I have to give lot of positive energy.
लेकिन यहाँ एक practical
lot of love,
lot of
compassion,
but then
not pain.
Yeah,
he's already in pain.
Yeah, but then you know, like it's so much inbred. This is what I think lot of.
तो यहाँ ही तो soul consciousness का. यहाँ ही तो
soul. It's so difficult because you continuously feel so much in pain.
Yeah, but that's okay. If you want to be in pain, please continue being in pain. That's okay. But please remember that your pain is reaching out to the child.
So actually,
and ask yourself, do you want to give pain?
No.
Then वो question आ जाता है ना. अगर you are in pain, और हमारे पास justification भी है उस चीज के लिए कि I'm attached to the child, तो मुझे you know दर्द होना ही चाहिए. तो ठीक है, दर्द आपका तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन what about the child? Do you want to give pain? And more important, अगर हम positive state of mind में है, we know the right action to take, कि अभी क्या करना है. Confused state में क्या right action लेंगे? कई बार the mother only collapses over there. You know, बच्चे को कुछ हुआ, the mother doesn't know what to do. She's all confused. यहाँ phone करे, वहाँ करे. You need to heal. You know, so that's why detachment. हम detachment को अगर right perspective में समझे, तो उससे कोई प्यार कभी कम नहीं होता है. प्यार बढ़ता है, क्योंकि दर्द निकलता जाता है. अभी क्या है, अटैचमेंट में प्यार तो है लेकिन दर्द भी है बहुत सारा. तो द चाइल्ड गेट्स लव एंड पेन. व्हेन देयर इज अटैचमेंट देयर इज लव एंड पेन बोथ. देयर इज लव, नो डाउट अबाउट दैट. तो इसलिए लोग कहते हैं ना, अटैचमेंट को कैसे खत्म कर दे, बिकॉज दे फील दैट इज ओनली लव. तो लव को खत्म नहीं करना है. तो अटैचमेंट इज लव एंड पेन बोथ, बट इट इज अ पैकेज. डिटैचमेंट इज lot of love minus the pain. Then we understand ki which one is more healthy, mere liye bhi aur sambandh ke liye bhi, chahe wo bacche ka sambandh ho ya koi bhi sambandh ho. I don't want to give pain and neither do I want to feel pain, because if I feel pain I will give pain.
Yeah, because
it's false swarup. You know, I cannot say ki I am feeling pain but I don't want to give pain. Wo waisa hone nahi wala hai. If I am hurt, vibration of hurt will reach. If I am upset, vibrations of being upset will reach. तो इसलिए डिटैचमेंट मतलब सोल कॉन्शियसनेस. कि एक मदर और नर्स में देखो क्या फर्क है. एक नर्स सपोज मदर है, या एक डॉक्टर मदर है, वो सारी दुनिया का इलाज कर सकती है
अपने बच्चे का,
अपने बच्चे का नहीं. एक दवाई खिला देगी, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना है, सर्जरी करनी है, वो अपने बच्चे का नहीं कर सकती है, बिकॉज द हैंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग. तो ये दैट इटसेल्फ इज अ साइन कि जहां अटैचमेंट आई वहाँ एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई.
तो इनफैक्ट यू नो लाइक होल पर्सपेक्टिव चेंज. मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है खुद को कि पूरा का पूरा देखने का तरीका, नजरिया बदल जाता है. लेकिन सिस्टर शिवानी, हम खुद को तो सोल कॉन्शियसनेस में रखने में अभी उतने कामयाब नहीं हुए हैं. बच्चे तक सोल कॉन्शियसनेस आना कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस विच रियली
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी नेचुरल. और बच्चे के साथ तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि बच्चे की अपनी ईगो नहीं है. यू नो, जब दो लोगों की ईगो टकराती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन बच्चा इज ईगोलेस, एंड अगर उसके सामने हम ये सोल कॉन्शियसनेस यू नो इस अटेंशन पर रखे, इट विल बी अ मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. करना क्या है, जैसे पहले भी देखा, सवेरे उठकर 10 मिनट अपने आप से बैठें, उस स्वरूप में वापस स्थित हो, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू रिमाइंड, मैं एक माँ हूं, नहीं ये मेरा रोल है, लेकिन मैं कौन हूं जो ये रोल प्ले कर रही हूं. आई एम अ प्योर सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर और अ फादर. दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर हैपन्स, प्योरिटी शुड बी देयर इन एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन, बिकॉज आई एम अ प्योर सोल प्लेइंग दैट रोल. You know, if it's I'm just a mother or a father, then I have the freedom to shout at the child, to you know, to behave in different ways, to think negative. But I'm a pure soul playing that role. This is soul consciousness. Soul consciousness doesn't mean ke sara din main atma hu, main atma hu. Sirf bolne se nahi hoga.
Action.
Lekin ye yaad jab rahega ki main ek pavitra atma hu, main ek shant swarup atma hu, aur wo bachcha bhi kaun hai? वो भी एक पवित्र आत्मा है. सो यू आर एक्सचेंजिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ एंड द मोस्ट एलिवेटेड एंड द प्योरेस्ट एनर्जी. इससे ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप
कहीं नहीं हो सकता. डेफिनेटली कहा भी यही जाता है.
एंड फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिस करें, उस अवेयरनेस में रहे, एंड इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी.
बहुत सुंदर. एक ऐसे रिश्ते को एक नई पहचान आपने दी जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और आज एक नए परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख पाए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
ओम शांति.
ओम शांति. अगली बार जब आप अपने उस मासूम नन्हे से बच्चे की आंखों में देखेंगे और सोचेंगे कि कितना प्योर, कितना पवित्र है, तो वो बच्चा नहीं, वो सोल है. उस आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए और एक नए नजरिए से उस नन्हे मुन्ने के साथ अपना रिश्ता जोड़िए, और ये कोशिश कीजिए खुद को एहसास दिलाने की. बाकी सबको एहसास अपने आप होता जाएगा, लेकिन एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, if this relationship develops that he or she, the child, is also an individual, a soul which has her own qualities, I think zindagi bahut sundar ho jayegi. Ek naya khoobsurat rishta judega jisme dard nahi hoga. Koi aur sawal hai, koi aisi baat hai jo aap hamare sath share karna chahte hain, swagat hai. Aap hame phone par ya phir email par bhi sampark kar sakte hain.
Hamare phone number hai 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.
रिश्तों को जांचने का, उन्हें एक नई नजर से देखने का एक प्रयास हमारा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में. आज नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा है, माँ बाप का, हम सबका. आगे बढ़ेंगे, अगली कड़ी में थोड़े अगले पड़ाव पर चलेंगे, और बच्चा जब पढ़ाई या एजुकेशन की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, तब क्या हमारी उम्मीदें रहती हैं, किस तरह से हम सोल कॉन्शियसनेस में रहकर उस परिप्रेक्ष्य को बदल सकते हैं, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ियों में. दीजिए इजाजत, नमस्कार.
ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है. यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999-344-555, 0999-344-666 और 0987-366-555. आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com.
जब हम कहते हैं मैं, तो ये मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर के भीतर एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ.
आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है. दिस इज डीप स्लीप. And we go on living our life in this sleep, and that is why we are victim. Nobody can hurt me.
क्योंकि अपने आप को मैनेज करने के लिए हमें तीन सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करना है, जो एक है मन, दूसरी है बुद्धि, और तीसरे है हमारे संस्कार.
सुख, शांति और खुशी को जीवन के हर पल में अनुभव करने के लिए देखें आपका अपना कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. हर रोज शाम 7:10 पर आस्था चैनल पर।
नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नई जमीन पर तलाशते हुए एक नए सफर की तरफ हमारा आगाज हुआ है और इस शुरुआत में हमने शुरू किया उस रिश्ते से जो कि सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र माना जाता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता, माँ बाप और उनके बीच का संबंध सबसे खूबसूरत सदियों से माना जाता रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो एक नया परिपेक्ष सामने आया था कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहने लगते हैं, जब हम ये खुद के लिए कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, तो जो हमारी एक्सटेंशन जिसे मानते थे वो भी तो एक इंडिविजुअल, वही आत्मा है जो अपने आप में परिपूर्ण है। ये परिपेक्ष, ये सोचकर अगर हम उस रिश्ते को निभाते हैं तो सचमुच एक नया मोड़ आता है। आगे बढ़ते हैं, इसी रिश्ते को थोड़ा अगले पड़ाव तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं और हर बार की तरह इस सफर की हम सफर हमें इस बारे में अवेयर कराती, ये बताती कि किस तरह से नए मोड़ दिए जा सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। दैट वॉज अमेजिंग, यू नो लास्ट व्हाट वी टॉक्ड, कि ये रिश्ता जो कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है, एक इंडिविजुअल, एक आत्मा का प्रवेश होता है और हमारे हर संबंध में उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें तो वो रिश्ता, जब वो आता है, मेहमान आता है या एक नया इंडिविजुअल जुड़ता है, वो इंडिविजुअल है, इस याद के साथ एक नई पहचान बनती है। बच्चा 2 साल तक हो गया और हमने उसे देखा, काफी कुछ उसने अपने आप समझा, क्योंकि हम उस तक नहीं समझा रहे होते उसके बाद।
अब इस 2 साल के दौरान भी जो आपने कहा, इन्फॉर्मेशन जो बच्चे के अंदर जा रही है, बिकॉज यू आर इन द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप, एंड अगेन इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, डेस्टिनी, ये साइकिल को हमेशा अगर हम ध्यान में रखें तो ओवरऑल हमें तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन हमें अब समझ में आई, यू नो, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज वी हैड गॉन थ्रू दैट होल फेज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग और फिर हमें अब एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी थिंकिंग को चेंज करने में। लेकिन बच्चा है, उसको तो हम जैसा अभी से सिखाएंगे वो वैसा ही बड़ा होता जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू टीच द चाइल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड टीचिंग वुड बी फर्स्ट विद आर ओन बिहेवियर, कि हमारी जितनी पॉजिटिव थॉट्स हो, फिर थोड़ा सा उसको सिखाया भी जाता कि राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर, क्योंकि उतना शायद समझने की भी शक्ति ना हो, राइट इन्फॉर्मेशन टू बी फेड इन। यू नो अभी क्या होता है, हम टीवी देख रहे हैं, बच्चा गोदी में है, वो भी टीवी के सामने है।
ओ, यहाँ पे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट, टीवी के साथ अगर हम देखते हैं तो बच्चे को खिलाया ही
आई हैव सीन मदर्स, इनफैक्ट मैंने भी शायद कभी किया होगा कि बच्चा खा नहीं रहा तो टीवी चला दिया, कार्टून नेटवर्क ऑन किया और फिर आप फीड करते जाते हो.
हाँ, तो यही वो डेवलप हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. और फिर हम बड़े होकर भी वैसे ही खाना खाते हैं आई थिंक, एंड कहीं ना कहीं वहां से ही वो स्टेज शुरू हो गई कि आप अपनी अवेयरनेस खो देते हैं दैट टेलीविजन टेक्स ओवर यू. और फिर उस स्थिति में आपके अंदर कुछ भी डाला जाए तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अंदर क्या लेके जा रहे हैं. तो क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने देखा अन्न का मन पर प्रभाव, तो अन्न बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत हाई एनर्जी फूड होना चाहिए, लेकिन वो किस स्थिति में खाया जाएगा, अगर वहां वायलेंस चल रहा है या कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो वो देखकर शायद उस बच्चे को उतना नहीं भी समझ में आए, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है. हमें समझ में आएगा वो तो हमारे थॉट्स कैसे चलेंगे नेगेटिव, व्हाट्स द एनवायरमेंट, तो बच्चा किस स्थिति में वो भोजन खा रहा है. और वो संस्कार, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, थॉट क्रिएट हो रहा है, एक्शन में आ रहा है, रिपीटेड एक्शन संस्कार बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का संस्कार बनता जाता है टीवी के साथ बैठकर भोजन खाने का.
इनफैक्ट अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, जब कहा जाता है कि पेरेंटिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसे ये बताया जाए कि ये कप है, ये पंखा है, ये चेयर है, बल्कि आई थिंक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम सही परिपेक्ष मैं उसको जिंदगी दे रही, क्योंकि वो ये सब तो सीख ही जाएगा.
हाँ, ये तो सिखाते हैं हम, बट इन द राइट पर्सपेक्टिव, यू नो एवरीथिंग हैज टू बी इन द राइट वे.
इनफैक्ट बच्चा कई बार गिर जाता है, चोट लगती है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हप कर दो,
हाँ,
you know, जमीन को हप कर दो, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन नाउ इफ आई लुक एट इट एक्चुअली,
क्योंकि हमने ये समझा कि वो बच्चा है. सी अगेन, सोल कॉन्शियसनेस कितना चेंज करेगी. हाँ, कॉस्ट्यूम बच्चे का है, लेकिन आत्मा को सब कुछ समझ में आ रहा है. उसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ बड़ा मत कीजिए, बिकॉज अभी का एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक तरीका उसको समझाने का, वो उसका संस्कार बनता जा रहा है, जो हमारे बहुत सारे आज संस्कार हैं. और फिर उन संस्कारों को चेंज करना कितना मुश्किल है. यू नो इट्स सो ब्यूटिफुल दैट वी हैव द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे उस बच्चे को बड़ा करना है. अब जैसे आपने कहा कि वो बच्चा चलते चलते टेबल से ठोकर मारे, तो द इजिएस्ट वे टू मेक हिम स्टॉप क्राइंग फॉर अस इज कि टेबल की गलती थी, और हम टेबल को
मारो, मारो, टेबल को मारो,
और उस बच्चे को भी सिखाते हैं कि टेबल को मार, यू नो इसकी गलती है. हमने इंस्टिल कर दिया उसके अंदर कि जब भी आपको दर्द होता है, जब भी आपको चोट लगती है, गलती किसी और की है, आपकी गलती नहीं थी. ये बिलीफ सिस्टम इतना डीप इनग्रेन्ड हो जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग कैरी करता है कि वेन एवर आई एम हर्ट, वेन एवर आई एम इन पेन, इट्स समवन एल्स.
एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट सम. इट कैन बी यू नो अ टेबल एज वेल,
इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ सिचुएशन. उनकी वजह से मुझे चोट लगी, वो मेरे रास्ते में आए, यू नो मैं चल रहा था, मैं ठीक चल रहा था, टेबल मेरे रास्ते में खड़ी थी, बिकॉज नोबडी टॉट मी कि मैंने गलती से टेबल को तरफ पैर लगा दिया. नो, आई वॉज टॉट द अदर वे राउंड कि टेबल आपके रास्ते में खड़ी थी, टेबल की गलती है, टेबल को मारो एंड यू मूव ऑन. सेम थिंग कैरीज ऑन इन लाइफ कि जो भी आया रास्ते में ऑब्स्टिकल, मेरी गलती नहीं थी, वो ऑब्स्टिकल मेरे रास्ते में आया, उसको मारो और उसको ब्लेम कर दो कि उसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है एंड मूव ऑन. इट लुक्स वेरी स्मॉल कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग.
एंड देन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट बिलीफ सिस्टम से हमारा थॉट क्रिएट होता है,
राइट?
सो इतना तो डीप रूटेड है,
डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है ना. किसी को भी कभी भी बच्चे को चोट लगती है, इट्स ऑलवेज द अदर पर्सन दैट्स रिस्पॉन्सिबल. अब यही चीज, ये नहीं कि बच्चे को मारना है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंडिंग तो देंगे ना कि मे बी यू हैव टू चेंज द वे यू आर वॉकिंग. इवन इफ यू वर वॉकिंग राइट, अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, टीच हिम हाउ टू मूव अहेड, टीच हिम हाउ टू एडजस्ट, टीच हिम हाउ टू चेंज, इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉट योर फॉल्ट, द टेबल्स फॉल्ट. तो ये बहुत डीप, मतलब एक एक स्टेप पे वी आर ग्रूमिंग हिम कि वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम लेकर चलेगा. तो उसको अगर शुरू से ये राइट यू नो समझ दी जाए कि आपके चलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यू नो करेक्शन की जरूरत है, उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कि आप राइट तरह से चल रहे थे लेकिन टेबल आई थी ना रास्ते में, तो टेबल को तो समझ नहीं है, आप समझदार हो. पॉजिटिव रीति से उसको, ये भी नहीं कि ये आपकी सारी गलती थी, आप समझदार हो. वो अपने आप हिल नहीं सकती, आप तो चेंज हो सकते हो, यू नो दैट वे इट विल हैव टू बी पॉजिटिव वे
एंड देन इन द लाइफ एक्चुअली ही लर्न टू टेक टर्न्स
एब्सोल्युटली
यू नो मोर
आपने जो बचपन से सिखाया होगा यू विल देन टीच हिम दैट एट एवरी स्टेप. जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा स्कूल जाएगा उसको कोई कुछ ऊपर नीचे कह देगा यू विल टीच हिम दैट अगेन द सेम थिंग यू विल टीच अगेन एंड अगेन दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग उसकी गलती है उसकी गलती है. ठीक है भले बाहर कुछ भी हो रहा है व्हाट कैन यू डू अबाउट इट टर्न एडजस्ट मूव अहेड दीज थिंग्स विल देन बी अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. लेकिन वो बचपन से सिखाना पड़ेगा यू नो सो लेट्स नॉट इम्पार्ट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन.
पेरेंटिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये सुनते आ रहे हैं लेकिन किस परिपेक्ष में क्या उसे ये सिखाना कि पंखा है आग है ये सिखाया जा सकता है लेकिन ये परिपेक्ष की चोट लगती है तो वो आपकी अपनी
जिम्मेवारी
भी हो सकती है जिम्मेवारी भी है. एक और बात अगर इसी परिपेक्ष में देखें तो अब सारा कुछ बदलता हुआ नजर आता है इस फियर यू नो आप सो जाओ नहीं तो कोई आ जाएगा बाहर अंधेरा है बाहर भूत है बाहर गंदा आदमी है बाहर बूढ़ा आदमी है लाइक दाढ़ी वाला आदमी है जस्ट लाइक आई थिंक इट हैपन्स इन एवरी हाउस विद एवरी चाइल्ड.
हम फियर बचपन से ही इंस्टॉल करते हैं. वैसे अगर एक बच्चे को देखा जाए द चाइल्ड इज फियरलेस उसको कोई डर नहीं होता है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है यू नो. लेकिन हमें उसको सिखाना है लेकिन सिखाने का एक तरीका होता है. अब जैसे आग जल रही है यू नो और अगर बच्चा उसको छूने की कोशिश करता है या यू नो गैस के सामने आ जाता है जनरली हम क्या करेंगे कि उसको जोर से मारेंगे और कहेंगे बिल्कुल नहीं उसके सामने नहीं जाना यू नो. बट उसको नॉलेज नहीं देंगे कि वो क्या है उससे हार्मफुल क्या हो सकता है. जैसे ही वो अपना हाथ उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है हम हाथ को जोर से मार के उसको परे हटा देते हैं फियर डाल देते हैं. लेकिन अभी तक उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि वो क्या है जिससे मुझे दूर किया गया.
लेकिन यहाँ माँ बाप के साथ ये शायद है कि क्या वो समझ पाएगा क्या वो है उसको समझ है इतनी कि वो समझ जाएगा.
राइट सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड आई थिंक इट नीड्स टू बी एक्सपेरिमेंटेड कि अगर वो गैस के पास हाथ लेकर जा रहा है या फायर के सामने हाथ लेकर जा रहा है देखो अगर हमने उसको सिर्फ डांट के परे कर दिया ही विल डू इट अगेन. आज तो हम हैं तो हमने देख लिया हमने रोक लिया कल हो सकता है हम सामने नहीं हो तो वो फिर करने की कोशिश करेगा. तो हम क्या कर सकते हैं बहुत सिंपल सा तरीका है आप प्यार से उस बच्चे के हाथ को अपने हाथ में लीजिए छोटा सा हाथ है आप उसको धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंस से कि कम आई शो यू व्हाट इट इज और धीरे धीरे आप उसको गैस के पास लेकर जाइए. Bring it near the fire because give him the knowledge what it is instead of just saying this is wrong. And I for my entire life I might not know ki why it is wrong and always that thing will be in me I want to try this out why
kya
this
hai?
Is wrong
kya hai?
You know ye sare jo suspicions create ho jate ye hai kya kyun mujhe isse dur rakha jata kyunki kya hota hai agar hum deliberately dur rakhenge to uski taraf jane ke liye aur bhi zyada temptation hoti hai. Take the hand near the fire. Obviously, you're not going to put it into the fire. Take it very, very close to the fire. Your hand is there before the child's hand. Take it very close to the fire. जैसे ही आप आग के थोड़ा सा नजदीक पहुंचेंगे आपको बिल्कुल उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है. द चाइल्ड हैंड विल फील द हीट और उसे वो अच्छी लगने नहीं वाली है वो खुद से अपना हाथ विदड्रॉ करेगा. यू विल से नहीं कोई बात नहीं ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी नहीं होने वाला. अगेन ब्रिंग इट It will say no and withdraw his hand. He has experienced it. अगर हमने वो हाथ को बिना एक्सपीरियंस किए विदड्रॉ किया होता ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. और जब आप नहीं होंगे उसके अंदर वो टेम्पटेशन आएगी फिर से उस चीज को ट्राई करने की और ये एक बहुत डीप उसकी लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी में रहेगा कि जिन चीजों से मुझे मना किया जाता है उसको वो टेम्पटेशन आएगी उनको ट्राई आउट करने की. एंड फायर इज अ वेरी स्मॉल थिंग लेकिन हर चीज पे सिर्फ डरा के नहीं एक यू नो क्यूरोसिटी नहीं क्रिएट करो फुल इन्फॉर्मेशन देनी होगी फुल समझाना होगा कि उससे क्या नुकसान होता है. बिकॉज देन व्हाट विल हैपन जो रिलेशनशिप डेवलप होगा सी वी टॉकिंग अबाउट व्हाट रिलेशनशिप विल डेवलप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड इट विल बी वेरी स्ट्रांग इट विल बी ऑफ ट्रस्ट. अगर हम ऐसे ही मना कर देते हैं तो उसे पता नहीं है उसके अंदर यही थॉट बैठ रहा है कि ये मुझे चीजों से मना कर देते हैं क्यों ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर हर चीज समझा के की जाएगी तो उसको बहुत ट्रस्ट बैठ जाएगा आपके ऊपर कि आप जिस भी चीज के लिए मना करते हो उसके पीछे आपके पास एक बहुत लॉजिकल रीजन होता है, एंड दिस ट्रस्ट लॉन्ग टर्म लेटर ऑन इन लाइफ विल वर्क मिरेकल्स, बट इट हैज टू बी बिल्ट अप एट दैट फाउंडेशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इस रिलेशनशिप में हमें ध्यान रखना होगा कि इंस्ट्रक्शन मोड नहीं चलेगा, यू नो डायरेक्शन मोड नहीं चलेगा कि आप डायरेक्शन उसको कुछ और दें और अपने जीवन में कुछ और करें, उसको कहें कि सो जाएं और खुद टीवी देखें, उसको कहें कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए और खुद पिए, दैट रिलेशनशिप विल नॉट वर्क, दैट्स नॉट अ स्ट्रांग रिलेशनशिप. एंड फैक्ट जो हम करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ही तो वो कर रहा है, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. जो हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव उसकी सोच पर पड़ रहा है, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके व्यवहार वैसा बनता जा रहा है. वी डोंट हैव टू डू मच यू नो इन हाउ टू मोल्ड अ चाइल्ड, वी हैव टू एक्चुअली मोल्ड आवर सेल्फ.
दैट्स व्हाट यू नो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर. इट इज क्वाइट अ लॉट क्योंकि हमें तो आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की, हमें तो आदत है कॉफी पीने की,
तो फिर वो भी वही करेगा.
हाँ तो
फिर देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट.
पर फिर हम ये नहीं चाहते कि अभी से शुरू कर दे वो, हम चाहते हैं कि वो इन सके कि आई वेट कि पांच साल तक तो हो जाए कम से कम. इनफैक्ट आई डिड दिस यू नो कि पांच साल तक मेरे घर में चॉकलेट नहीं आने दी मैंने जब तक मेरा बच्चा पांच साल का नहीं हुआ. लेकिन दिस इज आई थिंक ऑल्सो
वो पांच साल में आपने भी तो सामने बैठ के नहीं खाई होगी ना. सी दैट्स व्हाट व्हेन यू वांट द चाइल्ड टू हैव इट यू ऑल्सो हैव टू हैव इट ओनली एट दैट टाइम. आप उनके सामने ले क्यों, क्योंकि फॉर अ चाइल्ड द पेरेंट इज द रोल मॉडल. तो पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं बच्चा उसको सही का टैग लगाता है कि ये सही है. पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं इंटरनली उसका बिलीफ फिट हो रहा है ये सही है. पेरेंट्स जो खा रहे हैं ये सही है. पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं ये सही है. पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं ये सही है. तो हर चीज जो हम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, एक छोटा बच्चा है बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को. वो स्टेज क्या है, इन्फॉर्मेशन लेते जाना लेते जाना लेते जाना, क्रिएटिंग थॉट्स एंड क्रिएटिंग डेस्टिनी
एंड क्रिएटिंग बिलीव्स एक्चुअली
टोटली. तो इसलिए आप हर चीज जो उसके सामने कर रहे हैं यू आर क्रिएटिंग हिज बिलीफ सिस्टम.
इनफैक्ट यही बात है जो हम जब संस्कार की बात थी तो आपने कहा था कि वो संस्कार जो कंटिन्यूस यू नो इंप्रेशंस है जो बनते हैं
बनते जा रहे
हैं. जब कहा जाता है कि माँ बाप संस्कार देते हैं
तो ये वो यही वाले यही संस्कार बन रहे हैं. अब हम क्या करते हैं कि उस संस्कार ये तो देते हैं कि झूठ नहीं बोलना सच बोलना, लेकिन दिस इज ओनली बाय सेइंग बाय वर्ड्स. वो उससे नहीं होगा. जब हम थोड़ी सी गलती करते हैं पेरेंट्स तुरंत से डांट देते हैं बहुत जोर से. बिलीफ सिस्टम बैठ रहा है कि जब कोई गलती करे उसको इस तरह से डांटा जाता है बिकॉज माई पेरेंट्स डू द राइट थिंग. और धीरे धीरे वो बिलीफ सिस्टम बन गया, लाइफ लॉन्ग चलेगा.
क्योंकि उस टाइम पे मैं तो कोई एक्ट नहीं कर रहा हूँ तो बच्चे का इंप्रेशन वही होगा जो पेरेंट्स कर. ओके दिस बिकम्स वेरी क्लियर.
इसीलिए मैंने बोला ब्लेम कल्चर भी डाला कि आपकी गलती नहीं है. उसने मान लिया कि मेरी कभी गलती नहीं होती है, गलती हमेशा क्यों, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बताया था मेरी गलती नहीं होती. पर्सनैलिटी उसी तरह से डेवलप होगी. बाद में वो मम्मी पापा को नहीं याद करेगा बड़े होकर, लेकिन बिलीफ सिस्टम ही वो
आदत वही होगी.
आदत वही होगी. तो हर चीज जो आपको उसके अंदर संस्कार वो बनाना है वो खुद करके दिखाना होगा. उसके अंदर अपने आप बनता है
कहीं ना कहीं उसका बिलीफ सिस्टम उसका संस्कार वही
डेवलप हो रहा
जो हम कर रहे हैं. दिस बिकम्स वेरी क्लियर.
और जब हम उसको आत्मा रूप में देखेंगे तब हमें ये ध्यान में आएगा कि वो समझदार है. हम ज्यादातर समझते हैं कि तो बच्चा है इसको कुछ समझ में नहीं आएगा,
पता नहीं चल रहा,
इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. द सोल अंडरस्टैंड्स. आप भले इट विल टेक इट्स टाइम टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी वर्क हो रही है, अंदर का प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है. इसलिए आप जो उसको समझाएंगे कि बाहर अंधेरा है, बाहर भूत है, ये क्यों बताना, वाई गिविंग इन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्यों उसको उससे मना करें डर क्रिएट करके, वाई नॉट विद अंडरस्टैंडिंग कि अंधेरा है, अंधेरे से क्या होगा, गिव इट द अंडरस्टैंडिंग द सोल विल अंडरस्टैंड. करके देखिए, इट माइट सी व्हाट हैपन्स इज भूत है दिस इज द इजियर ऑप्शन आउट. तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग द इजियर ऑप्शन आउट कि बस ये भूत बोल दिया और वो बैठ जाएगा. अगर उसको भूत का भी तो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वो भी तो हमने क्रिएट करके उसको समझाया, तो अंधेरे का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए.
सिस्टर शिवानी, इससे एक और आगे स्टेप बढ़ते हैं और बच्चे का पहला इंडिपेंडेंट कदम जब वो पहले स्कूल में जाता है, पहली बार वो अपने घर के उस पूरे वातावरण से निकलकर एक नए वातावरण में पहली बार वो स्वतंत्र है और अपना नया परिप्रेक्ष्य देख रहा है, ऐसे में बच्चे को कैसे आप तैयार करें अब क्योंकि हमारा पूरा नजरिया बदल रहा है, खुद को भी कैसे प्रिपेयर करें? पेरेंट्स छोड़ ही नहीं पाते, इतना अटैचमेंट रहता है कि वहां कैसे एडजस्ट करेगा, क्या होगा, खाएगा, रोएगा, वापस आते हुए रोते हुए आएगा, क्या होगा?
आई थिंक बच्चे से ज्यादा डर तो पेरेंट्स के अंदर होता है इस टाइम पे, क्योंकि अगेन बच्चे के अंदर डर होता ही नहीं है एक्चुअली. डर तो हमने उसको सिखाया होता है कि डरना होता क्या है. हाँ, ये अलग बात है क्योंकि वो कभी हमारे से अलग नहीं हुआ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू डू इट, तो देर इज अ लिटिल एप्रीहेंशन. लेकिन उसके लिए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स प्रिपेयर तो करते ही हैं, बट इट्स less about preparing the child and it's more about preparing myself. You know, it's more about making myself understand ki nothing is going to go wrong. Kahin na kahin wo negative thinking itni deep baithi hui hai, nahi wo wahan jayega to kuch problem hoga, wo nahi khayega, usko koi dantega to nahi, wo kisi ke sath jhagda to nahi karega. We have got so used to creating negative thoughts. To bacche ko kya samjhayenge? Sabse pehle to खुद को समझाना पड़ेगा कि स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज आपकी एक एक थॉट ट्रांसमिट हो रही है. इट्स एज गुड एज यूर सेइंग इट टू द चाइल्ड कि यू नो ये सब गलत होने वाला है वहां पे. अब हमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है? हम बोल तो कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं. हम सोच रहे हैं वहां ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो खाना नहीं खाएगा, और उसको बोलते हैं वहां खाना खा लेना हाँ, और वहां किसी से झगड़ा नहीं करना, और अंदर से सोचते हैं कि वहां तो झगड़ा होगा, तुम वहां किसी को मारना नहीं, अंदर से सोचते हैं कि ये मारेगा या कोई इसको मारेगा. नाउ देयर इज टोटल डिसहार्मनी बिटवीन थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस एंड दिस कन्फ्यूजन रीचेज द चाइल्ड.
And that is why I think the child
there is so much confusion there. The child will not be able to say it to you, but he is getting those negative vibrations and positive words. And that's a conflict. And what reaches first is negative vibrations. Thoughts pehle pahunchti hain, shabd baad mein pahunchne wale hain. To jo aap bol rahe hain, because it's for the best of the child, lekin usko pehle andar strongly फील करना होगा, उसको अंदर स्ट्रांगली संकल्प करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता हुआ जाएगा. जो पेरेंट्स ये पॉजिटिव सोच सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, नथिंग विल गो रॉन्ग देयर, वो ही विल बी हैप्पी देयर, फ्रेंड्स विल बी वेरी गुड, यू सी द चाइल्ड विल हैव लेसर प्रॉब्लम इन सेटलिंग देयर.
इनफैक्ट देयर कैन बी यू नो लाइक हम अपने दर्शकों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि अगर डाउट्स आते भी हैं, वी कैन हैव दोज काउंटर यू नो पॉजिटिव थॉट्स, स्ट्रांग थॉट्स, दैट नहीं होगा.
नहीं होगा. अभी इसका मतलब ये नहीं, कई लोग सोचते हैं कि हम सोचे ही नहीं तो फिर अगर वो सिचुएशन हो जाएगी, हाउ विल वी बी प्रिपेयर्ड फॉर इट? बट वी हैव टू बी प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स फॉर अ पॉजिटिव सिचुएशन, एंड 99.9% सिचुएशन पॉजिटिव ही होगी. लेकिन अगर कुछ नेगेटिव थोड़ा सा भी, या किसी ने बच्चे ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, लेकिन आपने अपने बच्चे को किस स्थिति में भेजा है? अगर उसको इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव बनाकर भेजा है, तो वो उस नेगेटिविटी को भी फेस कर पाएगा. लेकिन अगर वो ही कमजोर गया, तो ही विल नॉट बी एबल टू.
एंड अनदर थिंग इज यू नो लाइक फॉर आई थिंक ऑल द नेगेटिव सिचुएशन वी कैन ऑलवेज से कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स.
एब्सोल्युटली.
जब आएगा सामना करने के लिए हम सक्षम है.
राइट. और जब वो सिचुएशन कोई ऊपर नीचे ऐसी आती भी है, वी विल टीच द चाइल्ड हाउ टू सी. दैट इज वेयर वी आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पेरेंट और बच्चे का ही नहीं, लेकिन उस बच्चे का अपने आप के साथ. बिकॉज हर रिलेशनशिप में हमने देखा, इट्स लेस अबाउट यू नो मी विद यू, बट इट्स फर्स्ट मोर अबाउट मी विद माई सेल्फ. मेरा अपने आप से क्या रिलेशनशिप है? फियर, नेगेटिविटी, ये तो पहले मेरा अपने आप से रिलेशनशिप है. अगर इसको बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हो, पॉजिटिविटी को बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदर डाला हो, तो मेरा अपने साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो माई रिलेशनशिप विद एनीबडी एल्स विल बी वेरी ब्यूटिफुल. तो आई थिंक दिस पीरियड फॉर अ पेरेंट वेरी वेरी क्रिटिकल. एक बच्चे के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर डालना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो अबाउट हाउ आई एम फीलिंग. एक बच्चे को अगर हम भले ये लगे कि नहीं बच्चे को क्या समझ में आएगा, लेकिन उसके लेवल पर उसे भी समझ में आएगा कि जो वो फील कर रहा है इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीच हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हैप्पीनेस
इज विद इन,
इज विद इन, हैप्पीनेस इज योर प्रॉपर्टी. हैप्पीनेस आपको सिर्फ मार्क्स से या डांस क्लास जाने में या कराटे क्लास, इससे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. ये एक्टिविटी आपको करनी है, लेकिन हाउ टू रिमेन हैप्पी, हाउ टू रिमेन स्टेबल, आई कैन टीच दैट टू द चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. फिर बाद में बड़े होकर उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसके संस्कार ही वैसे बन जाएंगे, लेकिन वो तब होगा इफ आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ. तो ये हम बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है ये बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं. पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हम उसको और भी दूर कर रहे हैं. पहली बात तो हम एक बच्चे को, एक आत्मा है ना, एक इंडिविजुअल है, हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा है या ये आपका है या इसको मैं वापस खींच लूंगा. नहीं, वो सारी एनर्जी उसकी तरफ ट्रांसमिट कर रही है. वो एक इंडिविजुअल है, वो किसी को बिलोंग नहीं करता.
अगेन यू नो वी फील दैट वी ओन द चाइल्ड, क्योंकि हमने इतना किया है, हमने पैदा किया है. अगेन यू नो दैट If I can remember now the whole
देखो ये तो हर स्टेप पे वर्क करने वाला है. हर स्टेप पे कि थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी इन हार्मनी. वी आर टॉकिंग के रिलेशनशिप्स में हार्मनी, सबसे पहले अपने. तो हमारे रिलेशनशिप में जो अपने आप से है हार्मनी नहीं है. थॉट वर्ड एंड एक्शन डिफरेंट है.
बिल्कुल, मुझे याद आ गई सच की डेफिनेशन यही थी, मन कर्म और वचन से एक
एक, एक जैसा. जो सोचते हैं वही बोलिए और वही करिए. और अगर वो सोच अच्छी नहीं लग रही है, क्यों हम बोल को परिवर्तन करते हैं? सोचते हम नेगेटिव है, बोलना हम पॉजिटिव चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव सोचते पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को तो पॉजिटिव ही बोलना है. तो क्यों ना सोच को परिवर्तन करके फिर उसको बोले, ताकि ही गेट्स द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट बट देन ऑल्सो गेट्स पॉजिटिव एनर्जी विद दैट, एंड दैट विल री इन्फोर्स हिज बिलीफ सिस्टम विद दैट. कॉन्फ्लिक्ट नहीं देना है उसको.
सो एवरी टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन माय थॉट,
एंड चेक एंड चेंज, उसको चेक कर दीजिए. चेंज द थॉट, चेंज द थॉट, एंड जितना आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे यू विल बी एबल टू teach the child also, and he will be growing up like that with very natural positive thinking. Negative thinking humne sikhaya hai actually. Atma ka original swarup
positive,
positivity hai. Hum sikhate hai, negative instructions hum dena shuru kar.
Sister Shivani, yahan jab dusre bachchon ke sath interaction shuru hota hai tab kahin na kahin comparison aane lagta hai.
Comparisons ghar mein bhi hota hai, with your brother, sister, with cousins, and comparison with friends, with neighbors. To ye comparison ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. हम कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी बच्चे को दे रहे हैं. व्हाई? बिकॉज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि उस आत्मा की क्या यूनिकनेस है. यू नो एवरी सोल इज यूनिक. ये हमें सबसे पहले याद रखना होगा कि हर आत्मा यूनिक है. हर आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर आई है. अब हम उसको सिर्फ शरीर के रूप में जब देखते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स आती है. हम सोचते हैं ये दोनों ही तो हमारे घर में है. ये इंटेलिजेंट है बच्चा तो दूसरा बच्चा भी इंटेलिजेंट होना चाहिए. इसको अगर इस चीज का शौक है तो इसको भी होना चाहिए. ये फर्स्ट आता है तो इसको भी फर्स्ट आना चाहिए. वी फॉरगेट दैट दे आर नॉट दोज टू बॉडीज. वो दो आत्माएं हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं और अलग अलग विशेषताएं लेकर आए हैं. दोनों के कर्म अलग अलग है, तो वो संस्कार को पहचानना होगा. दैट डजंट मीन कि हम उसको पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं. एवरीथिंग इज डन, लेकिन कैपेसिटी को समझना होगा. आप उसको इंडिविजुअल देखकर मोटिवेट कीजिए, आप उसको और मोटिवेट कीजिए, उसको यू नो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड. बट कंपैरिजन इज नॉट मोटिवेशन, कंपैरिजन इज डीमोटिवेशन. क्योंकि यही एक बिलीफ सिस्टम है जो अगेन लाइफ लॉन्ग चलता है. तब जब हम कहते हैं कि मेरे पास तो मारुति गाड़ी आ गई, मैं खुश हूं, लेकिन जब मेरे पड़ोसी के पास या जब मेरे संबंधी के पास उससे बड़ी गाड़ी आ गई, देन आई एम नॉट हैप्पी. व्हाई? बिकॉज बचपन से मुझे सिखाया जाया था कि कंपैरिजन, यू हैव टू बी बेटर देन द अदर. आई वॉज टॉट दिस राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. आई वॉज नेवर टॉट कि यू आर वेरी फाइन द वे यू आर. You can be very happy the way you are. You don't have to do something what the other person is doing टू बी सक्सेसफुल, ये हमें बचपन से सिखाया गया कि नहीं, जैसे बाकी कर रहे हैं आपको भी वैसे करना है।
क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये जानते ही नहीं, यू नो अगेन, क्योंकि वो भी तो उसी तरह से बड़े हुए हैं, उनके लिए भी वही सब कुछ है। यू नो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में पूरा देखें, वक्त में देखें, तो उनके लिए भी तो यही उनकी पहचान बन गई है। यू नो कि
हर एक बच्चे को मोटिवेट करें, लेकिन इंडिविजुअल देखकर। यू कैन मोटिवेट हिम टू स्टडी, टू डांस, टू डू वट एवर हॉबीज यू वॉन्ट, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट विद कंपेरिजन। बहुत डीप कॉम्प्लेक्सेस बचपन से आ जाते हैं एंड ये पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देते हैं। हमेशा मेजोरिटी टाइम घर में एक बच्चे के अंदर ये रह जाता है कि द अदर चाइल्ड इज सुपीरियर टू मी, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या वो ज्यादा स्मार्ट है या वो ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट है। अब एक्स्ट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट दोनों ही तो विशेषताएं हैं। व्हाई डू वी डिसाइड यू नो कि नहीं, जो एक्स्ट्रोवर्ट है ही इज बेटर, तो फिर हम वो बोल देते हैं तुम्हें भी इसकी तरह बनना है, तुम्हें भी इसकी तरह बोलना है, तुम्हें भी इसकी तरह सबसे बात करनी है। तो वी आर पुटिंग इट इनटू द चाइल्ड कि तुम्हारी ये जो संस्कार है, तुम्हारा जो ये विशेषता है, वी डोंट लाइक इट। यू नो उसका सेल्फ एस्टीम, हु डिसाइडेड कि बींग टॉकेटिव लाइक दैट इज बेटर या बींग साइलेंट एंड क्वाइट इज बेटर? हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि समाज आज ये कहता है। वी डिसाइडेड, व्हाई कुडंट वी अप्रिशिएट कि ये बच्चा भी बहुत अच्छा है बींग टॉकेटिव एंड बींग वेरी नाइस विद एवरीबडी आउटसाइड, लेकिन ये बच्चा भी बहुत अच्छा है जो बहुत शांत है, ये ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। वी क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज संस्कार, उसका संस्कार है इंट्रोवर्ट होने का। वी क्रिएट दैट कॉन्फ्लिक्ट, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। ओके टू इंस्पायर अ चाइल्ड टू चेंज, बट Not beyond a certain limit.
In fact, यहाँ एक बात physically अगर हम देखें तो जो बच्चे left handed है उन्हें parents इतना force कर करके right hand करवा देते थे, right handed हो जाएंगे वो, लेकिन वो doctors ने prove कर दिया कि कहीं ना कहीं आपका जो mental balance है वो
absolutely, क्योंकि हमने decide कर लिया ना कि right hand normal है। ये हमने decide किया तो हम उस बच्चे को normal की तरफ जबरदस्ती लेके जाना शुरू किए। सी इट्स नॉट दैट हम चेंजेस नहीं चाहते हैं, ठीक है, वी फील कि अ पर्टिकुलर थिंग इज बेटर, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट इज कि उसका जो अभी एग्जिस्टिंग संस्कार है उसको अप्रिशिएट कीजिए। कि आप बहुत चुप रहते हैं ये बहुत अच्छा है, यू नो साइलेंस इज वेरी गुड, एंड गिव हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस कि दिस विल हेल्प यू टू चैनलाइज योर एनर्जी, आपकी बहुत शक्ति वेस्ट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इस तरह से करके देखो। तो फर्स्ट अप्रिशिएट द संस्कार एंड देन इंस्पायर हिम टू चेंज, इंस्टेड ऑफ सेइंग वो ऐसा है तुम ऐसा क्यों नहीं बन सकते हो, तो वो हमेशा ऐसे ग्रो अप करेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं ना इस बच्चे के अंदर है,
फिर रिजेंटमेंट
टुवर्ड्स दैट एब्सोल्युटली, नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स द पेरेंट एंड नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स द ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर खुद से नहीं आता, कहीं ना कहीं हम ही इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं वो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसको।
हमने अपने लिए भी जब बात की थी हमने कहा था एक्सेप्ट अपने आप को, खुद कीजिए जैसे
वो जो है, जैसा है, यूनिक है। एवरी सोल इज सो यूनिक एंड एवरी सोल इज कैरिंग संस्कार्स ऑफ द पास्ट, तो कहीं ना कहीं हम उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो उसके संस्कार्स आए हुए हैं। हाँ, अब आप उसको थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हैं नए संस्कार्स बनाने के लिए, लेकिन उसकी यूनिकनेस को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी। हर बार हम यही कह रहे हैं कि पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट और बहुत एनर्जी इसमें लगती है और बहुत प्यारा होता है, इसमें कोई एफर्ट नहीं होता, एफर्टलेस होता है, नेचुरल, सहज है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जब हम क्रिएट कर देते हैं, चाहे हम थॉट में है, थॉट और एक्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट वो उस तक पहुंचता है। और किसी भी उम्र में हो वो बच्चा, वो थॉट और एक्शन का, थॉट और वर्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी पहुंच रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट से खुद को भी और बच्चे को भी बचाने का एक प्रयास करना चाहिए। आज इस बातचीत से सामने आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो एक यूनिक रिश्ता है, हमारे साथ एक ऐसा संबंध है जो कि बहुत नेचुरल है, बहुत सहज है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम खुद भी नहीं जानते कि हम वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा बाहर स्कूल जा रहा है, दूसरे बच्चों के साथ उसका रिश्ता, या फिर घर में ही बाकी जितने भी रिश्तेदार या जितने भी व्यक्ति घर में है उनके साथ रिश्ता है। कोशिश हम यही करें, एक ये प्रयास करें, एक ये नया मोड़ लाएं कि जो सोच रहे हैं वही कह दें, या अगर हमें जो कहना है उसी को सोच में परिवर्तित कर दें तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और जिंदगी सहज हो जाएगी, बच्चे के साथ भी रिश्ता और सुंदर हो जाएगा। कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। बच्चों और पेरेंट्स के बीच के रिश्ते की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं। बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई का दबाव है, पीयर प्रेशर है, एज का दबाव है, और ऐसे में हमारे और उसके रिश्ते बहुत नाजुक मोड़ ले लेते हैं। उन नाजुक मोड़ों पर कैसे तैयारी करें और कैसे उनके साथ बिहेव करें, कैसे उनके साथ इस रिश्ते को और मजबूत करें, यही कोशिश रहेगी जानने की अगली कड़ी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक एहसास जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो है रिश्तों का। रिलेशनशिप्स सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनते जाते हैं, और कहीं न कहीं ये नजर आता है कि उन्हीं में कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं से पेन या दर्द की शुरुआत भी होती है। क्या ऐसा हो गया है कि हमारे रिश्तों में इतनी गिरावट और इतना दर्द भर गया है? यही सब तलाशने की कोशिश है हमारी इस श्रृंखला में। अगर आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच के रिश्ते की, यानी कि माँ बाप और उनके बच्चों के बीच का रिश्ता, जो कि सबसे मधुर, सबसे प्योर माना जाता है, लेकिन आज वो भी सवालों के घेरे में है। आज आगे और बढ़ते हैं और उस उम्र की तरफ चलते हैं जब बच्चा इस उम्र में पहुंच जाता है कि अपने डिसीजंस खुद ले रहा होता है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा हो जाता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। अभी तक तो हमारे साथ वो बच्चा चल रहा था जो बहुत छोटा था, जिसको हमने एक इंडिविजुअल के रूप में देखा, एक आत्मा जो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस भी खुद ले सकती है, और एक अगर हम उसे एक इंडिविजुअल के रूप में लो तो रिश्ता और मधुर हो सकता है और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। उस पड़ाव पर पहुंचते हैं, बच्चा उस मुकाम पर पहुंच गया है जब टीनेज में आ गया है, सबसे कॉन्फ्लिक्टिंग उम्र है, जहां वो खुद बाहर भी निकलना चाहता है। अब वो खुद भी समझ गया है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं और डिसीजंस खुद लेना चाहता है। यहां सबसे ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है और आज के इस दौर में तो और ज्यादा हो गया है।
कहीं ना कहीं अभी तक हम सोच रहे थे कि बच्चा हमारे कंट्रोल में है, है नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे कि बच्चा हमारे कंट्रोल में है क्योंकि वो हमारी बात मानता था, हमारे कहे अनुसार चलता था। व्हाट वी थॉट दैट वी कैन कंट्रोल द अदर इंडिविजुअल, वी कैन नॉट। इट वाज जस्ट दैट व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाटएवर वी वर सेइंग टू द चाइल्ड, वो उसको सुन लेता, अंदर ले जाता, उसे वो सही लगने लगता था क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे। और अब तक उसका जैसे कि सारी दुनिया अपने पेरेंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, कोई दूसरा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं था। तो पेरेंट्स की बात सही लगने के कारण वो पेरेंट्स के कहे हुए रास्ते पर ही चलता था। तो पेरेंट का भी ये बिलीफ सिस्टम बन जाता कि हम जैसे कहेंगे ये वैसे ही चलते हैं, तो दे आर अंडर माई कंट्रोल। अब एक सर्टेन एज के बाद और इन्फ्लुएंसेस भी आने शुरू हो जाते हैं, वेदर इट इज फ्रेंड्स, वेदर इट इज मीडिया, वेदर इट इज टीचर्स। ये इन्फ्लुएंसेस जब आने लगते हैं तो डिसीशंस में कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लगता है कि पेरेंट एक बात कहते हैं और बाहर फ्रेंड्स या मीडिया कोई दूसरी बात कह रहा है। और अब बच्चा अपना इंटेलेक्ट यूज करना शुरू करेगा कि कौन सी बात मुझे ज्यादा ठीक लगती है, और कई बार वो ऐसे डिसीशंस लेता है विच गो अगेंस्ट व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग। और वो धीरे धीरे पेरेंट के अंदर एक इनसिक्योरिटी स्टार्ट होने लगती है कि ये अब तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और ये फ्रेज भी बन गया, बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है, यू नो वे, बिकॉज अब वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलता, एंड दैट हर्ट्स। You know, that is the first thing where it starts hurting, where the child is doing something that I do not want him to do, or he is going against what I want him to do, and that's where that gap will start coming.
In fact, Sister Shivani, bilkul definite agar hum dekhen to kahin kuch aisa hi hota hai, lekin har baar bacche ka jo ilzam aata hai wo maa baap pe aata hai ki wo mujhe samajhte nahi hai. To sirf maa baap ye kehte hain ki bachcha hame samajh hi nahi raha hai, badtameez ho gaya, hamari baat hi nahi manta, to ye kahin na kahin communication gap bhi ho sakta hai.
Actually communication to bahut secondary level par aata hai kyunki communication is sitting and discussing, to wo to theek hai, lekin discussion karne ke liye bhi kya chahiye? You know, for two people to have a dialogue, there has to be mutual respect. And respect means कि आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. You know, this respect has to be there for each other. अभी के मन में क्या चल रहा है कि बच्चे के मन में चलता है कि मैं सही हूँ, parents गलत है. Parents के मन में चलता हम सही हैं, बच्चा गलत है. But अब ये दो जने बैठे हैं बात करने के लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन ये डायलॉग नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ने पहले से ये डिसाइड कर लिया है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, तो डिस्कशन क्या होगा? आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है अपनी बात कहो, क्या कहना चाहते हो आप, लेकिन अंदर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि दूसरा जो कहने वाला है वो सही नहीं है. सो यू आर लिसनिंग बट येट यू आर नॉट लिसनिंग, क्योंकि योर माइंड हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट इज रॉन्ग. You are right.
You know, because you're not ready to change. ये जो बच्चा भी इल्जाम लगाता है कि वो तो तैयार ही नहीं है सुनने को.
Absolutely. दूसरी तरफ लेकिन दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि दोनों का डिसीशन पहले ही बन चुका है. What each of us in any relationship we need to understand कि कोई गलत नहीं है. You know, कोई भी गलत नहीं होता है. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कह रहे हैं वो सही कहते हैं. स्व इच्छा से कभी भी कोई गलत नहीं सोचता है और गलत नहीं करता है. Nobody will say this thing is wrong but I am going to do it. It could be a crime but he has a justification for doing it. For me at the present moment this is right. The world will say this is wrong but I have a reason why it is right for me. This has to be understood. कि हर एक इस समय जो कर रहा है, जो कह रहा है, वो उसके लिए सही है. तो हमें क्या करना होगा, उसके दृष्टिकोण से जाकर देखना पड़ेगा कि वो उसके लिए सही कैसा है.
एम्पथाइज करना पड़ेगा.
एम्पथाइज, वी नो द वर्ड बट वी इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्चुअली डू इट. इट्स इफ आई होल्ड माय हैंड लाइक दिस, यू कैन सी दिस साइड एंड आई कैन सी अ डिफरेंट साइड. एंड हम सालों साल डायलॉग कर सकते हैं इस बात पे. कि यू नो दिस इज अ डिफरेंट साइड एंड आई से इट्स अ डिफरेंट साइड, लेकिन अनलेस आई सी दिस साइड या आप इस तरफ को देखते हैं, हमारे बीच कभी भी डायलॉग नहीं हो सकता. इट विल ओनली बी एन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट का कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट शुरू ही इस इंटेंशन से हुई थी, आप गलत हैं मैं सही हूं, एंड एंड भी इसी कंक्लूजन पे होगी कि मैं सही हूं आप गलत है. सो इट्स बेसिकली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज. तो एक्चुअली वो बात को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है. तो जब दो लोग डायलॉग करें बैठ के, या अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड सिट टू डिस्कस समथिंग, क्रिएट दिस थॉट विद कॉन्शियस अटेंशन कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो इस समय कह रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, मैं भी राइट हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो भी राइट है. एंड द पेरेंट ऑल्सो हैज टू सिट विद दिस थॉट एंड दिस एटीट्यूड कि उसकी एज में और उसके पीयर प्रेशर और इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से वो भी अभी जो कह रहा है वो बिल्कुल राइट है. नाउ सिट एंड डिस्कस, विद इन 5 मिनट्स यू विल हैव अ कंक्लूजन.
एंड देन व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं बच्चे की बात मान लेता हूँ तो बच्चे को तो आदत हो जाएगी कि मैं आई हैव गिवन, सी दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस ऑफ द पेरेंट्स इज, यू नो, कि मैंने अगर एक बात मान ली तो वो सारी बातें माननी पड़ेंगी, सब कुछ मनवा लेगा.
और अगर एक बात नहीं मानी तो,
हाँ, तो
यू सी इट इज ऑल अबाउट, या तो आपका रिलेशनशिप किस चीज पर बेस्ड है, ईगो पर या लव पर. सी देयर इज दैट डेफिनेशन. इफ इट इज सोल कॉन्शियसनेस, इफ देयर इज प्योर लव, तो फिर ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपने मेरी बात मानी या नहीं मानी, या इस डिस्कशन में आप जीते या मैं जीता. देयर इज नो विनिंग एंड लूजिंग. अपने बच्चों से या पेरेंट्स से विनिंग एंड लूजिंग नहीं हो सकता. तो इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट द राइट सोल्यूशन, जिसमें बोथ कैन बी ओके, यू नो. एंड आई थिंक इट्स मोर वी आर गोइंग थ्रू द एज जब पेरेंट्स को बच्चों को ज्यादा समझना पड़ेगा शायद, यू नो. वी हैव क्रिएटेड दैट माइंड ब्लॉक कि नहीं, बच्चे तो सब हमेशा ही गलत कहते हैं, यू नो, दे डोंट नो. वी हैव टू रियलाइज कि दे मेच्योरिंग वेरी फास्ट नाउ, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, उनके पास भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. सो गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू शेयर, वो अपनी हर बात आपसे डिस्कस करें, हर बात शेयर करें, एंड देन एक्चुअली आप उनके पोजिशन में जाकर बैठ कर देखिए.
यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि what is it right or wrong, again that's a very relative term, but what happens aaj ke is daur mein dost ban gaye hain is umr ke, koshish karte hain bahut parents, sab bhi conflict bahut hai, parents are ready to give in.
Friends ka bhav kya hai, even in the worldly sense if we see, let's keep aside the parent child relationship, friends arthat kya, because that's another relationship jo bahut beautiful hai. तो फ्रेंड्स हम किसको कहेंगे, जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जिनसे हम अपने मन की हर बात कर सकते हैं, जिनके सामने हमें शायद, मतलब होना तो यही चाहिए कि हमें प्रिटेंड करने की जरूरत ना पड़े कि हम जैसे हैं वैसे हैं. सो आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी वेरी, यू नो, अ पर्टिकुलर वे जस्ट टू इम्प्रेस यू, बिकॉज आई डोंट नीड टू इम्प्रेस यू, यू आर अ फ्रेंड already. So I don't have to influence you, I don't have to impress you, that's friends. Now can I do the same thing with my parents or with my children, ke kya bacche apni har baat, apne man ki deepest baat apne parents se kar chahte hain, kahin kai aisi koi baatein to nahi hai jo unhe apne parents se chupani padti hai, kyunki definitely there are two aspects ki agar hame kuch chupana pad raha hai तो देर आर टू रीजन्स, या तो हमें खुद पता है कि वो गलत है तो इसीलिए हम उसको छुपा रहे हैं, या दूसरा हमें ये डर है कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड, इसीलिए हम छुपा रहे हैं. लेकिन ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने एक मिसट्रस्ट बिल्डअप कर दिया रिलेशनशिप के अंदर, जिसके कारण हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है, और फिर उसके लिए और बहुत सारे गलत तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं. तो उसको डेफिनेटली फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे. देयर हैज टू बी अ सर्टेन ओपननेस इन द रिलेशनशिप वेयर आई डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू. यू नो द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ईदर वन, ना माँ बाप को बच्चों से कुछ छुपाने की जरूरत पड़े, आजकल पेरेंट्स को भी बहुत कुछ छुपाना पड़ता है बच्चों से, यू सी. तो हम ऐसा कोई कर्म करें ही क्यों जो हमें एक दूसरे से छुपाना पड़े या एक दूसरे से झूठ बोलना पड़े. दैट लाइन ऑफ ऑनेस्टी विल हैव टू बी देयर इन आवर रिलेशनशिप, तो फिर ना झूठ बोलना पड़ेगा ना कुछ छुपाना पड़ेगा।
मुझे लगता है यहाँ पेरेंट्स के लिए क्योंकि अगेन पेरेंट्स अभी यही सोच रहा है कि वो बहुत छोटा है, यू नो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है पेरेंट को भी कि वो बच्चा एक इंडिविजुअल एक एडल्ट
मैच्योरिटी लेवल है, ही कैन अंडरस्टैंड और शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो जितना हम उसको वो ट्रस्ट बिठाएंगे यू नो एज अ चाइल्ड, अगर आप बहुत अर्ली एज से एक बच्चे को अपने फैमिली डिसीजंस के लिए अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए, सी हाउ द चाइल्ड विल ग्रो। जितना ट्रस्ट आप करेंगे उतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करेगा। जिन पे हम कहते हैं ये तो बहुत छोटे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रख कर देखिए। कोई रिस्पॉन्सिबल अपने आप बन नहीं सकता है, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है दे जस्ट गेट इक्विप्ड टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से एज में डालना चाहते हैं। हम उसको 5 साल की एज में भी डाल सकते हैं और या फिर हम 25 होने के बाद भी समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालेंगे, जब हम फील करें दे आर नाउ केपेबल ऑफ इट, दैट वी हैव टू डिसाइड। एंड इट कैन बी एट अ वेरी यंग एज एंड दे विल स्टार्ट डेवलपिंग लाइफ। वो आत्मा है, उसके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं। अब हमें प्रयास सिर्फ ये करना है कि उन विशेषताओं को और भी इमर्ज करना है। तो ऑनेस्टी उस आत्मा की विशेषता है, लेकिन अगर हम उसको मजबूर कर देते हैं, हम अगर उसको बार बार डांटते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपनी विशेषता को छोड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली हम भी तो समवेयर रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए।
अच्छा, यहाँ से शिवानी एक और सवाल पेरेंट्स का, क्योंकि हमारे पास बहुत से जो मेल्स आ रहे हैं वो पेरेंट्स के हैं, बच्चों के भी हैं, लेकिन बच्चों के थोड़े डिफरेंट हैं आपसी रिश्तों के बारे में। वो ये कि जब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा खासकर इस उम्र में गलत कंपनी में जा रहा है, एंड डेफिनेटली इट मैटर्स, यू नो क्या पीयर ग्रुप में है वो, किस जगह है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द चाइल्ड, लेकिन किस तरह से ये शुरुआत की जाए, किस तरह से मैं उसको अप्रोच करूं, दैट बिकम्स अ डिफिकल्टी। बिकॉज कहीं ना कहीं जिस भी ग्रुप में है वो उसका प्रेशर, उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है,
उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक तो ये हमें शुरू से चेक करना चाहिए था, और जिस तरह से घर का वायुमंडल बना हुआ होगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि बच्चे बाहर किस तरफ जाते हैं। अगर घर के वायुमंडल बहुत स्ट्रांग हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, तो बच्चे को बहुत ज्यादा बाहर को, यू नो सी वेयर डू वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स वेयर वी आर सीकिंग फॉर समथिंग दैट वी डिडंट गेट, यू नो। तो बाहर से इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए?
घर का।
घर का तो होना चाहिए। तो आप फ्रेंड्स तो बनाएंगे, लेकिन अगर आप घर के वायुमंडल को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हुआ था, तो बाहर के लोग आपको चाहे कुछ भी कहे, यू नो दैट वेयर योर बेस्ट इज, इट्स एट होम। इफ इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो इफ दैट फाउंडेशन हैज बीन वेरी स्ट्रांग, कि आप बचपन से ही यू वर अ फ्रेंड। नॉर्मली हम फ्रेंड्स कब बनने की कोशिश करते हैं? आफ्टर द चाइल्ड हैज ग्रोन अप। By the time he's already made a lot of friends. So why not be friends right from?
In fact, उसका belief भी बन चुका है already कि ये parent है, you know. So वो belief को कैसे change करेगा?
Parent ही है, see the relationship doesn't change. लेकिन वो एक open relationship हो सकता है, वो एक comfortable relationship हो सकता है, और main चीज वो एक बहुत trustworthy relationship हो सकता है। A child has to be assured, उसको ये 100% confidence होना चाहिए कि मेरे parents, मैं जो हूँ जैसा हूँ, they like me a lot just for what I am. Normally what is happening is ki parents hamesha bachcho ko change karne ki koshish karte rehte hain. It's very difficult to accept the child as it is, kyunki hum chahte hain ki wo bachcha perfect ho, you know. Ek parent ke liye wo ek murti hai jiska wo nirman kar rahe hain, wo bana rahe hain us sculpture ko, to wo ek perfect picture chahte hain. Wo ye bhool jate hain ki samne wala ek individual hai jiski apni strengths and weaknesses है, तो वो हमेशा उसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। दे लव द चाइल्ड बट दे ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज द चाइल्ड। हाँ बहुत अच्छे हो, लेकिन ये कर दो, लेकिन ऐसे बन जाओ, लेकिन उसकी तरह बन जाओ,
उसकी परसेंटेज,
लेकिन अपने हाँ उसके जितना ले आओ। तो देर इज नेवर प्रोबेबली अ फेज वेयर द चाइल्ड फील्स कि मैं जो हूँ आई एम एक्सेप्टेड। अगर वो होता तो फिर उसे कभी भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे और तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ये श्योरिटी हो कि योर पेरेंट्स ऑलवेज टेल यू द बेस्ट फॉर यू, तो आप उतना ज्यादा उस इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे।
लेकिन बहुत सी मदर्स की ये कंप्लेन है कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी भी अच्छी बड़ी थी, बहुत ओपन थी, लेकिन सडनली वो चुप हो गई है, वो बात ही नहीं करती, वो बात ही नहीं करना चाहती। बहुत बार ये देखा गया है।
व्हाई कांट आई एक्सेप्ट कि दिस इज द फेज टू गो टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स?
इनफैक्ट दैट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, माँ इतनी हर्ट हो जाती है कि मेरे साथ नहीं डिस्कस।
तो फिर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यू शुड नॉट बी टू मच विद योर फ्रेंड्स। व्हाई? दिस इज द एज फॉर डूइंग दैट। अभी नहीं तो फिर कभी करेंगे। दे हैव टू गो थ्रू दैट फेज। हर फेज पर आप अटेंशन तो रखेंगे कि वो कुछ गलत संगत में नहीं जाते, लेकिन साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि दिस इज द फेज टू गोइंग मोर आउटसाइड। जहां आप घर से ज्यादा फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, दिस इज द फेज टू गो टुवर्ड्स दैट। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉट जस्ट आउटसाइड, अगेन हियर इट्स मोर आउटसाइड, नहीं कोई बात नहीं, हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंटरनली यू आर ट्राइंग टू पुल द चाइल्ड बैक, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी, और जहां वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी तो वो बच्चा आपसे और दूर होता जाए।
ये भी एक सवाल है कि डांटना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मैं अपने बच्चे को करेक्ट करूं या नहीं करूं?
बच्चा है, वो गलतियां तो करेगा, हम करेक्ट करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, बट विद पॉजिटिव एनर्जी, अथॉरिटी एंड एंगर। यू वॉन्ट टू करेक्ट द चाइल्ड, आप उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। From according to you, again, image आपने क्रिएट किया है, ये रॉन्ग है। Now you want to transform it to the right. See it from the other side, वहां ऑलरेडी इमेज है कि वो राइट है, राइट? बट येट यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म इट, आप जो कह रहे हैं उसके साथ साथ आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है। Don't give only talks, don't give lectures, don't shout. You need to give positive energy, and that is love. That is not anger. Anger is negative energy. Wo kabhi bhi ek positive transformation nahi la sakti hai. Relationship is two people and energy in between. Now, if you want to come closer, they will have to be positive energy. Aap chahte hain ki wo aapke nazdeek aaye, lekin aap transmit negative energy kar rahe hain, so the child is going further and further and further away. तो उतनी पॉजिटिव एनर्जी विच कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, विच कम्स फ्रॉम अनकंडीशनल लव। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अनकंडीशनल लव जो सिर्फ एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होता है, और अगर उस रिलेशनशिप से भी हमें वो नहीं मिला तो फिर कहीं ना कहीं वो एक खालीपन, वो एक वैक्यूम आ जाएगा कि nobody loves me the way I am. You know, and then I always try to prove myself to the world, because right from my childhood I was not loved for the way I am. Lekin if a child is brought up with this assurance, with this faith ki my parents just love me the way I am, he will never find the need to prove anything to the world.
Acha, yahan ek aur saath mein yahi conflict shuru hota hai, लड़का और लड़की का। अभी तक हमारे पास अगर एक लड़का और एक लड़की था, दोनों बच्चों को हम बराबर लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ रिबेलियसनेस लड़की की बहुत ज्यादा और हो जाती है। व्हाई मी दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स।
इट्स एक्चुअली ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर हम रखते हैं बच्चे के अंदर, यू नो, लॉट ऑफ पेरेंट्स से वी ट्रस्ट द चाइल्ड, बट एक्चुअली दे डोंट, यू नो। बाहर से अगेन दैट माइंड एंड द वर्ड इज डिफरेंट। बाहर से हम कहेंगे कि आई ट्रस्ट द चाइल्ड, एंड द थॉट्स में वी आर डाउटिंग द चाइल्ड, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, वो फोन पे अभी किससे बात कर रहे हैं, अभी कौन आया था नीचे, यू नो, एट एवरी स्टेप डाउट डाउट डाउट। तो वो डाउट का वाइब्रेशन तो वो पहुंचेगा ही, और ये डाउट का जो वाइब्रेशन है ये बहुत सफोकेटिंग होता है। इट डजंट लेट यू बी व्हाट यू वांट टू बी, एंड देन यू डोंट फील लाइक शेयरिंग विद योर पेरेंट्स, क्योंकि लगता है ये तो हर चीज में हमें डाउट ही करते हैं। ट्रस्ट मीन्स नो डिस्टर्बेंस हियर। एक भी थॉट नहीं आएगी कि कहीं ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आई हैव 100% ट्रस्ट कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैंने अपब्रिंगिंग ऐसी दी है। There is no reason कि आप कुछ गलत करेंगे, and secondly आप जो करेंगे आप आकर बता देंगे। That faith has to be there, and वो faith को आप transmit कर दीजिए with thoughts, with words, transmit it every day, क्योंकि हम वर्तमान समय ऐसे समय से चल रहे हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे ट्रस्ट और फेथ को बहुत जोर से शेक कर देता है. तो इसको कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए तो रोज ट्रांसमिट कीजिए कि आई हैव फुल फेथ इन यू एंड मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपके जीवन में जो हो रहा होगा यू आर गोइंग टू कम एंड टेल मी एंड सेकेंड आई हैव फुल फेथ कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे. And you have to mean this, but आप सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते. I have full faith कि आप गलत नहीं करेंगे. जब हम किसी पर इतना trust करते हैं, दूसरा morally bind हो जाता है हमारे trust का ध्यान रखने में. वो कभी भी हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगा. ये जो dialogue होता है ना parent child के बीच, आप क्यों नहीं मुझे trust करते हो, trust करो. It will not happen like that. It will never happen like that. It has to be an unconditional acceptance, not only parent for the child but also child for the parent. It will have to be both. हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि हम parent हैं. Parent का role क्या है? Guidance, no, direction, discipline. That's okay. उस role को निभाते चले. हम कब बोलते हैं कि आपने मेरा trust तोड़ दिया, मतलब आपने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता. It's trying to say that. कि जहां तक आप वो करते रहे जो मुझे ठीक लगता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ. जिस दिन आपने वो कर दिया जो मुझे ठीक नहीं लगता, तो आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया. That's not a relationship.
लेकिन मैं तो हमेशा ये, मुझे मालूम है कि बच्चे के लिए क्या सही है, तो मैं तो वही चाहता हूँ या चाहती हूँ जो बच्चे के लिए सही है.
That's fine. That's what we said. Come, sit, have a dialogue. लेकिन with the understanding कि बच्चा किसी और चीज को सही समझ कर चल रहा है, और आप एक सेकंड के लिए समझ कर चलिए कि वो भी सही है. ये एक जो बिलीफ सिस्टम बना लिया कि बच्चा गलत होगा और मैं ही सही हूंगा, ये वो एनर्जी एक्सचेंज होने नहीं देता. और उसी थॉट की वजह से बच्चा हमारे सामने ओपन अप नहीं होता, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि दे आर राइट एंड आई एम रॉन्ग. सो ही डजंट फाइंड द नीड टू कम एंड हैव अ डायलॉग. लेकिन वेयर ही स्टार्ट्स गेटिंग दिस एम्पथी फ्रॉम यू कि यू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज डन, वो खुद से आकर आपको अपनी गलती बता देगा, खुद से आकर आपको यू नो क्वेश्चन कर लेगा, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, व्हेन ही हैज फेथ कि आप अंडरस्टैंड करते हैं.
क्योंकि वो भी तो उस बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन में है.
एक्चुअली ही नीड्स समबडी,
यू नो, लाइक, क्योंकि तभी तो वो बाहर काउंसलर्स के पास जा रहा है, क्योंकि वो भी तो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ.
इट्स वेरी सैड ना कि आज हम एक स्ट्रेंजर को जाके सारी बातें बता सकते हैं. हम एक साइकाट्रिस्ट के पास जाके, एक काउंसलर के पास जाके अपनी सारी बातें बता सकते हैं, बट अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते.
और उनसे कह देते हैं कि हमें बताइए कि हम क्या करें.
एंड दे विल नेवर बी एबल टू टेल. दे कैन ओनली गाइड यू अ लिटिल बिट. लेकिन हाउ कैन इट बी द सेम एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड. तो जो रोल पेरेंट का था, आज वो ही काउंसलर वो रोल को प्ले कर रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन.
बट ये अगेन यू नो, एक आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया है जो आज के इस पूरे डिस्कशन का अंडरलाइन है कि हर कोई अपने दृष्टिकोण से सही की परिभाषा कह रहा होता है, सच पे.
इसको भी चेक कीजिएगा सारा दिन कि कई बार हमें भी तो लोग कहते हैं ना कि हम रॉन्ग है, बट दैट टाइम वी फील वी आर राइट. इसीलिए तो हम वो कर रहे हैं. इसी तरह जिन्हों को हम कह रहे हैं कि आप रॉन्ग है, तो वो भी उस टाइम यही फील कर रहे हैं कि वो राइट है. इट्स अबाउट सिटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग दैट, बट विद द थॉट दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट एंड नाउ लेट्स टॉक एंड गेट द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट.
वंडरफुल सिस्टर शिवानी, आज जो बातचीत थी वो एक उस वर्ग की थी जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. और एक्चुअली ये पेरेंट चाइल्ड का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा टीनेज में ही आती रही है. बट अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आई थिंक थिंग्स कैन बिकम मच बेटर. और जो काउंसलर हम बाहर तलाश रहे हैं वो घर पे ही हो सकते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
ओम शांति.
ओम शांति. बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब इस पड़ाव पर पहुंच जाता है कि डिसीजन खुद लेना चाहता है, सबसे बड़ी बात सामने जो पेरेंट्स कहते हैं वो यही है कि वो घर से बाहर निकलकर डिसीजन लेना चाहता है. लेकिन अगर ये एक अंडरलाइन थॉट हम अपने और बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, और बच्चा भी ये खुद सोच ले कि जो भी कह रहे हैं हम अपने दृष्टिकोण से सही है, उसके बाद डिस्कशंस करने बैठे तो शायद एक सोल्यूशन निकल आए, और शायद हम सही मायने में उसके दोस्त या वो काउंसलर या फिर पेरेंट भी बन पाए. बहुत सी बातें होंगी अभी भी जो आपके पास होंगी, बहुत से सवाल होंगे. आपका स्वागत है. आप हमें खत लिख सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 09999344555,
0999-344-666, 0987-366-555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं रिश्तों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों में ही कड़वाहट या मिठास कम होती नजर आ रही है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, एक मालिक और नौकर का भी हो सकता है, एक ऑफिसर और एक उनके जूनियर का भी हो सकता है। रिश्ते हर रोज हम अपनी जिंदगी में बुनते हैं, जीते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ ऐसे ही और रिश्तों के साथ अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999-344-555, 0999-344-666 और 0987-366-555। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।
शांति ओम।